नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश पर चर्चा करने वाले हैं।
जी
ये वसंत पंचमी पर आया था। शीर्षक है सूक्ष्मीकरण के बाद का ऐतिहासिक वसंत।
हाँ, ये वो समय था जब गुरुदेव अपनी विशेष सूक्ष्मीकरण साधना में थे, तो ये जो उद्बोधन है इसमें उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं पर, मार्गदर्शन पर काफी कुछ बताया था।
बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। शुरुआत में ही गुरुदेव अपने अनुयायियों को एक तरह से आश्वस्त करते हैं।
हाँ, क्योंकि उस समय कुछ अफवाहें चल रही थीं शायद उनके स्वास्थ्य को लेकर।
सही, तो उन्होंने साफ किया कि नहीं, मेरा शरीर स्वस्थ है। और उन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि अगर कभी शरीर छूटे भी तो उसे मृत्यु न समझें, उसे एक ट्रांसफर समझें।
अच्छा,
हाँ, मतलब वो सूक्ष्म शरीर से काम करेंगे और स्थूल शरीर से 100 गुना ज्यादा प्रभावी ढंग से।
100 गुना?
जी, और इसमें एक और दिलचस्प बात है, उन्होंने अनुयायियों से कहा कि आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए।
जैसे बच्चों की देखभाल करना बड़ों का कर्तव्य है, वैसे ही आध्यात्मिक रूप से वो बड़े हैं और वो सबका ध्यान रखेंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने वाली बात थी।
हाँ, ये उनका बड़प्पन दिखाता है। अच्छा, फिर उन्होंने पिछली वसंत पंचमी थी 2 मुख्य बातें भी दोहराई।
जी,
पहली तो ये कि युग संधि का जो समय है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस समय शायद सन 2000 में कोई 15 साल बाकी थे।
हाँ, लगभग।
और कहा कि प्रकृति के प्रकोप, बीमारियां, ये सब आपदाएं जारी रहेंगी क्योंकि मनुष्य के आचरण से प्रकृति कह सकते हैं कि नाराज है।
ये तो आज भी प्रासंगिक लगता है।
बिल्कुल।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने दोहराई वो थी सुरक्षा का आश्वासन।
हाँ, ये बहुत अहम है।
उन्होंने कहा कि उनकी जो शक्ति है उसका 50% हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा, वो अनुयायियों की सुरक्षा के लिए ही रहेगा, उनकी समस्याओं, उनकी कठिनाइयों में सहायता के लिए।
अच्छा,
और ये भी बताया कि उनसे सीधे मिलने के बजाय लोग उनसे मानसिक रूप से जुड़ सकते हैं।
कैसे?
रविवार को या फिर रोजाना 10 प्राणायाम करके और सिर पर हाथ फेर कर।
वाह,
बस इतना करके वो मानसिक मार्गदर्शन पा सकते हैं।
कितना सरल तरीका बताया उन्होंने।
वाकई बहुत सरल।
और फिर इसके बाद एक बहुत बड़ी योजना की घोषणा हुई है ना, यज्ञों के बारे में।
जी हाँ, यज्ञ परंपरा का पुनर्जीवन, ये एक बहुत बड़ा संकल्प था। 1 लाख गायत्री यज्ञ।
1 लाख? वो भी अलग अलग गांव में?
हाँ, हर गांव तक पहुंचने का लक्ष्य था। और देखिए, इन यज्ञों का उद्देश्य सिर्फ, मतलब, कर्मकांड नहीं था।
अच्छा,
ये एक माध्यम था गुरुदेव की प्राण ऊर्जा को हर गांव तक पहुंचाने का, वातावरण शुद्ध करने का और एक तरह से सुरक्षा कवच बनाने का।
और प्रक्रिया भी शायद सरल रखी गई थी।
बिल्कुल सरल। गुड़ और घी की छोटी छोटी गोलियों से हवन, ताकि कोई भी, मतलब, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसमें भाग ले सके। 1 कुंडिया यज्ञ पर जोर दिया गया,
ताकि संख्या बढ़े और पहुंच भी।
जी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा यज्ञ हो, ज्यादा लोग जुड़े।
वाह, ये तो बहुत व्यापक सोच थी। और इसमें अनुयायियों की भी भूमिका थी, उनसे भी कुछ सहयोग मांगा गया?
हाँ हाँ, सक्रिय सहयोग मांगा गया। हर जिम्मेदार व्यक्ति या जो मिशन की शाखाएं थीं, उन्हें लक्ष्य दिया गया।
क्या लक्ष्य था?
कि अपने आसपास के 5 नए गांवों में यज्ञ आयोजित करें और वहां मिशन की शाखा स्थापित करें। सोचिए, लक्ष्य था शाखाओं की संख्या को 5 गुना बढ़ाकर 1 लाख तक पहुंचाना।
1 लाख शाखाएं, जबरदस्त। ये तो संगठन को बहुत बड़े पैमाने पर फैलाना हुआ।
जी, जमीनी स्तर पर जुड़ाव और मजबूती।
और मुझे याद आ रहा है प्रचार के लिए संगीत को माध्यम बनाने की बात भी थी इसमें। कुछ अलग सा तरीका था ये।
हाँ, बहुत ही अनोखा। जैसे पुराने समय में नारद जी, शंकर जी या माँ सरस्वती ने संगीत का उपयोग किया था, वैसे ही गुरुदेव ने कहा कि व्याख्यानों की जगह संगीत का प्रयोग करो।
उनके अपने लिखे हुए गीत?
जी, उनके द्वारा रचित और देव कन्याओं द्वारा गाए गए गीत जो सीधे हृदय को स्पर्श करें। यहाँ तक कि यज्ञ स्थलों पर वीडियो के माध्यम से गुरुदेव और माताजी के संदेश और संगीत पहुँचाने की भी योजना थी।
तकनीक का भी उपयोग?
हाँ, ताकि संदेश ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुँचे।
और फिर ये वक्ता विश्वविद्यालय का क्या कॉन्सेप्ट था, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए?
बिल्कुल, ताकि स्थानीय स्तर पर ही प्रचारक तैयार हो सके जो संगीत भी जानते हो और यज्ञ भी करा सके।
कितने लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था?
1 लाख। 1 लाख ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति जिन्हें पूज्य गुरुदेव के हाथ का सर्टिफिकेट मिले, इसीलिए उस वर्ष को समय दान का वर्ष भी घोषित किया गया था।
समय दान का वर्ष, यानी सबसे अपना समय देने का आह्वान।
जी, सक्रिय भागीदारी का।
तो ये जो इतने सारे काम बताए गए, यज्ञ, संगीत, प्रशिक्षण, शाखा विस्तार, इन सब के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या थे, मतलब सार क्या था?
देखिए, मोटे तौर पर तीन मुख्य उद्देश्य समझ आते हैं। पहला तो जो युग संधि का कठिन समय था उसकी संभावित आपदाओं से निपटना,
ठीक है।
दूसरा, अनुयायियों की व्यक्तिगत सुरक्षा और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान। और तीसरा एक बड़ा लक्ष्य, विश्व में शांति स्थापित करना, जो परमाणु युद्ध जैसे खतरे उस समय मंडरा रहे थे उनको टालना।
अच्छा, तो ये व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक तीनों स्तर पर काम था।
जी हाँ, एक बहुत ही समग्र दृष्टि थी।
तो ये उद्बोधन सिर्फ एक सूचना या योजना नहीं थी, ये तो एक तरह का आह्वान था, एक पुकार थी।
बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक सामूहिक संकल्प लेने और मिलकर आध्यात्मिक प्रयास करने का आह्वान था, ताकि व्यक्ति भी सुरक्षित रहे, समाज भी और दुनिया भी शांति की ओर बढ़े।
हाँ।
और ये आज भी ये सवाल खड़ा करता है कि जो सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा होती है उसका प्रभाव कितना व्यापक, कितना शक्तिशाली हो सकता है।
ये सोचने वाली बात है। मतलब पूज्य गुरुदेव अनुयायियों को सिर्फ दर्शक नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि सब इस परिवर्तन के महायज्ञ में सक्रिय भागीदार बने।
जी।
और आज के समय में भी ये विचारणीय है कि कैसे हमारी अपनी व्यक्तिगत साधना और हमारे सामूहिक प्रयास मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं, है ना? सोचने का एक बिंदु।
निश्चय ही।
तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।